اب ایک بہت اچھی بات مجھے یاد آ گئی, وہ میں آپ کو سناؤں. سماج کی بڑی بھینکر دشا ہے, ایک ایک انگ جو ہے وہ وکرت ہو گیا ہے. سامان جن سماج اس پیڑا سے بہت پیڑت ہے. مجھے ویکتیگت روپ سے بہت سے نوجوکوں سے پریچے ہے, جو بڑے ہونہار ودیارتھی تھے اور ایڈمنسٹریٹو سروس میں ہیں جگہ جگہ پر. تو ان سے ابھی بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی رہو اگر ایمانداری اور سچائی سے راشٹر کی سمپتی کی رکشا کرتے ہوئے پرجا کی سیوا کرنا پسند کرو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ وہ لڑکے کہہ رہے ہیں شریر کے سمبندھ سے. چھ بھائیوں کے بیچ میں 18 بھتیجے ہیں, بہت سے یونین گورنمنٹ میں بھی ہیں, پروونشیل سروس میں بھی ہیں اور دوسری جگہ پر بھی ہیں, شکشا وبھاگ میں بھی ہیں, طرح طرح کے استھان پر ہیں, اور بھی بہت سے ہیں. بڑا بھاری لمبا چوڑا پریوار, بہت سی رشتے داریاں. سب لڑکے ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ میں آتے تو پرائے رانچی میں ہی میں تھی اور ان کی ایک ایک گوشتی رویوار کو ہوا کرتی تھی. ان لوگوں کی بات میں بتا رہی ہوں. تو کئی لڑکے ایسے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے روگی ہو گئے جوا وقت میں, 40 برس کے آس پاس ہیں, ابھی کم ہی ہے. کیا ہو گیا تو کہتے ہیں دعا کرے کیا, اوپر سے دباؤ اور نیچے سے گھیراؤ, بلڈ پریشر کیسے ٹھیک رہے. تھوڑے میں وہ کتھا مجھ کو زیادہ نہیں کرنی ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ انگ ایسا وکرت ہو گیا ہے کہ صحیح آدمی ایماندار آدمی کشل سے رہ نہیں سکتا. بڑی پریشانیاں طرح طرح کی, خاص کر کے اب فون وبھاگ کا نام لیا جائے, شکشا میں بھی ویسے ہی ہے اور شاسن میں بھی ویسے ہی ہے اور جگہ جگہ پر اب سینا میں بھی ویسے ہی پرویش کر رہا ہے. بہت سی باتیں. تو کیا ہوتا ہے کہ مانو سیوا سنگھ کا کاریکرم جب ہوتا ہے, ساماجک لوگ جب آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ویکتیگت روپ سے شانتی مکتی بھکتی کی بات بہت اچھی طرح سے سامنے رکھ دیا اور ہم اس سب کو سویکار کرتے ہیں, اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے. لیکن ہم سب لوگ تو بڑے زور سے الجھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ برہد سماج کے ساتھ ویکتی کا جیون اس پرکار سے گٹھ گیا ہے کہ سماج کی اور سے آنے والی آپتی وپتی کے بیچ میں ہم لوگ مینٹل بیلنس کو رکھیں کیسے اور اپنے نیتک استر کو سنبھالیں کیسے. تو ٹھیک بات ہے بھائی, میں سوچنے لگ جاتی ہوں, میں چپ ہو جاتی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اس پرشن کا میں کیا اتر دوں. مانو سیوا سنگھ نے اتر تو دیا. کیا کہا کہ بھائی سماج کوئی ہوا میں تو بنتا نہیں ہے, ویکتوں کا سموہ سماج ہے. ایک ایک ویکتی ایک ایک جگہ پر اگر صحیح ہو جائے تو اس ایک صحیح ویکتی سے وہاں کا وایو منڈل صحیح ہو سکتا ہے, اور ایک ایک ویکتی اپنے کرتویہ میں درڑھ ہو جائے تو کرتویہ نشٹھ ویکتوں کا سموہ جو بنے گا بہت سندر سماج بن سکتا ہے. تو اپائے تو یہی ہے, دوسرا اپائے نہیں ہے. لیکن پھر کوئی کوئی سادھو سنت منڈلی کے مل جاتے ہیں تو ہم کو ڈرا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں. ایک سجن ملے تھے ہمارے ساتھ کے کاریکرتا, تو کہنے لگے کہ میں اپنے گرو مہاراج کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ارے برادھاناتھ تو مانو سیوا سنگھ میں کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہاراج اپنا کلیان اور سندر سماج کا نرمان کرتا ہوں. اور کیا بتائیں, صحیح بات جو تھی انہوں نے کہہ دیا. تو ان کے گرو مہاراج نے کہا کہ ارے بھیا سن, تو کلیو مچا دے گا. کلو उनके प्रभाव को मिटा देगा, कलियुग का प्रभाव को मिटा देगा। चला है सुंदर समाज का निर्माण करने, बेचारे सुन करके चुप रह गए। अब गुरु महाराज सोच क्या है, मेरे पास आके कहने लगे बहन जी अब क्या करें, अब क्या करें, अब बहन जी भी चुप, अब क्या करें। मन ही मन इस बात का मुझे दुख हो गया। हमने कहा कि ये तो बात तो कह रहे हैं, अब हमारे पास इसका उत्तर क्या है। उत्तर तो आदमी जीवन से दे, कथन के उत्तर का तो कोई फल नहीं होता। तो सहायता तो मुझे बहुत मिली है, बहुत सहायता मिली है। कल संध्या समय, कल प्रातःकाल की बैठक में आपने सुना कि बुढ़े लोगों को पेंशन दिलाने के लिए हरिराम जी गांव से फॉर्म भरवा के सही करवा के ले आते हैं। तो मानव सेवा संघ के आजीवन कार्यकर्ता के ऊंचे चरित्र की धाक ऐसी जम गई है कि अगर हरिराम का वो रिकमेंड किया हुआ है तो मजिस्ट्रेट उस पर दोहरा के सोचता नहीं है कि सत्य है कि मिथ्या है। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि कलऊ में नैतिक ऊंचाई का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभाव तो है, लेकिन सोचने की बात है। तो यह प्रभाव व्याख्यान से तो नहीं जम सकता, यह प्रभाव ऊंचे चरित्र से जम सकता है, ठीक है ना। तो बहुत संख्या मेरी दृष्टि में, अब हमारी दृष्टि कौन सी पूर्ण है कि हम उसकी गलती न जाने, लेकिन फिर भी ऐसे ही सोचो कि मेरी दृष्टि में अगर बहुत संख्या गलत दिखाई दे रही है तो बुराई की वृद्धि में अगर कोई रोक नहीं डालता है तो हम भलाई की वृद्धि में रोक डाल करके निराश क्यों हो जाएं? ठीक, निराश तो नहीं हो सकते। तो एक एक भाई को, एक एक बहन को इस ढंग से अपने को अच्छाई की ओर चलाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है और बताया भी है कि अगर बिना प्रचार किए बुराई का प्रचार हो जाता है तो बिना प्रचार किए भलाई का प्रचार नहीं हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। इतना बड़ा समूह, इस बीच में अगर एक व्यक्ति विकराग बैठा है, एक व्यक्ति शुद्ध हृदय का बैठा है, एक व्यक्ति जन समाज का हितकारी बैठा है, तो उसके भीतर से जो संकल्प और चिंतन उठ रहे हैं वो क्या दूसरों में अच्छे चिंतन को उद्भूत नहीं करेंगे? करेंगे। तो बुराई का प्रचार हो जाता है बिना व्याख्यान दिए, तो भलाई का प्रचार क्यों नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जरूर, जीवन के माध्यम से करना पड़ेगा, कथन से नहीं होगा। इस तरह की बातचीत हम लोग करते रहे, काम अपना करते रहे। तो सुनने को मिला मुझे, बड़ा अच्छा लगा। पिछली दफा दिवाली के समय पर सत्संग के बाद भागवत कथा हो गई थी यहाँ, तो उस भागवत कथा में ये सुनने को मिला कि कलयुग का जो पूरा पीरियड है, सतयुग त्रेता द्वापर से तो जरूर छोटा है, लेकिन हम लोगों के स्पैन ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो अवधि है, उसकी नाप तौल से तो कलयुग का पीरियड बहुत लंबा है। तो उसने ये लिखा है कि इतना जो लंबा पीरियड है कलयुग का, इतनी लंबी अवधि है, तो वो सारा समय जन समाज में घोर अंधकार और पाप और दुख नहीं रहता है। बीच बीच में थोड़े थोड़े समय पर सतयुग का प्रभाव भी उसमें आता रहता है। पंडित जी अपना सुना रहे थे, मैं सुन रही थी, तो भीतर मुझको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि अब हम नहीं कह सकते हैं कि जो सत्य के प्रभाव के लिए इतनी संस्थाएं, इतने संत महात्मा, इतने जन समाज के सेवक लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो सब का सब निरर्थक जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझको बड़ा आश्वासन मिला। हमने कहा कि अब तो हम और उत्साह से प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा कलयुग घोर अंधकार में पड़ा रहेगा ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में सत्य का प्रकाश होता रहेगा, अच्छी वृत्तियों वाले लोग आते रहेंगे और समाज के दुख को घटाते रहेंगे, और मनुष्य का समाज जो है वो अच्छे फिर आपके पर चलता रहेगा। तो क्योंकि मैं उस ग्रंथ के वाक्य में विश्वास करती हूँ, इसलिए मेरे दिल में कुछ सहारा मिल गया। हमने कहा कि अच्छी बात है, तो अब हम इस ढंग से काम करेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि कलयुग के प्रभाव से सब के सब डूब जाएं, ऐसा मत सोचो। और रामचरित मानस ने भी लिखा है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्या काल धर्म की युग धर्म क्या पहनते ही, ऐसा कुछ एक है कि जरूर कलयुग का प्रभाव हम लोग मानते हैं, लेकिन सबको प्रभावित नहीं करता। जो सचेत लोग हैं, जो भगवत भक्त लोग हैं, जो हरि आश्रित लोग हैं, जो विवेकी जन हैं, उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ भी प्रमाण है कि आदमी चाहे तो ऊंचे उठ सकता है, और इसमें समाज को ऊंचा उठाने में भी सहायता मिल सकती है। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी आशा मेरे भीतर थी, और उत्साह पूर्वक हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। तो एक संत के पास मैं पहुंच गई। उन संत के जीवन की जो उनके उन संत के जीवन की जो बातें हैं, उससे ऐसा प्रकट होता है कि वे सशरीर इस धरती पर हैं जरूर, लेकिन उनको अपने निज स्वरूप का, निज लोक का, निज प्रेमास्पद का अनुभव हर समय रहता है। पास में रहने वालों ने देखा है, मैंने भी रह के देखा है। उनके पास में ठहरी हुई थी, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बड़ी बढ़िया बात बताई, अभी याद आ गई, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। वो ध्यान में बैठी थी, स्त्री शरीर है, ध्यान में बैठी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एकांत कमरा है जहाँ पर जब उनकी इच्छा होती एकांत के रूप में रहती है, तो कहने लगी कि हम एकांत में बैठे थे ध्यान, तो मुझे ऐसा लगा कि एक पूरा प्रकाश से भरा हुआ एक अद्भुत जगह पर मैं पहुंच गई हूँ। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ है नहीं। वहाँ पहुँच करके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे यहाँ आ गई। फिर कोई बात नहीं, देखा उन्होंने तो देखा तो वहाँ नौ ऋषि बैठे थे। सबको तो उन्होंने नहीं पहचाना। बता रही थी कि एक तो मुझे मालूम हुआ कि वशिष्ठ जी हैं, और दूसरे स्वामी शरणानंद जी महाराज हैं, और तीसरे उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज हैं। तो नौ में से तीन को इन्होंने पहचाना, बाकी को नहीं पहचाना। तो हंस के कहने लगी कि धरती पर तो मैंने ये सुना था कि सप्त ऋषियों के मंडल में सात ऋषि हैं, आप लोग तो नौ जने बैठे हैं यहाँ। तो उनके गुरु ने कहा कि हे किशोरी जी, आप ही ने तो हम दोनों को इसमें शामिल होने के लिए भेज दिया है, अपने को और स्वामी शरणानंद जी महाराज को, आप ही ने तो इसमें शामिल कर दिया है। बच्चे की तरह उनके साथ खेलते थे, विनोद की बातें होती रहती थी, और कुछ उसमें सत्यता भी है। तो उनके गुरु ने ऐसे कह दिया तो ये हंस के रह गई। फिर वे लोग बड़े गंभीर हो गए, ऐसा जैसे कि कोई बहुत चिंताजनक समस्या पर बातचीत हो रही हो, ऐसे वे नौ के नौ बिल्कुल गंभीर हो गए। ये देख रही थी, देख करके पूछा इन्होंने कि क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो उनके गुरु ने और स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, और किसी ने बातचीत नहीं की। इन्होंने कहा कि संसार की हालत इतनी खराब हो गई है, इतने लोग सब बड़े दुख में पड़ गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे इन दुखी जनों को संभाला जाए। तो किशोरी जी ने अपने महाराज जी से और हमारे महाराज जी से दोनों से कहा कि महाराज जी, आप लोगों को संसार के दुखी लोगों पर इतनी दया आ रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो आप दोनों चलिए हमारे साथ धरती पर, चल के संभाला जाए। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि किशोरी जी, आपको तो मालूम है हम धरती पर नहीं जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो किशोरी जी चुप हो गई, इनकार कर दिया, और कह रही थी कि बड़े बड़े जोर से दृढ़ता के साथ इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको तो मालूम है हम नहीं जाते हैं। तो चुप हो गई। پھر اس کے بعد کہا انہوں نے کہ بڑا بڑا سا موٹا موٹا اتنا لمبا لمبا ایک دم سفید رجسٹر پر خوب لکھ لکھ کر کے اتنا تھا لگا کے رکھا ہے ان رشیوں کے پاس. دیکھا انہوں نے, دیکھنے لگی دھیان سے, تو انہوں نے کہا کہ کشوری جی یہ سب ودھان بن رہا ہے سنسار کو سنبھالنے کے لیے. ایسا بولنے میں بھی ان کی باتیں جو ہم کو یاد آ رہی ہیں تو ایک دم سے بدن بہر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے سوچ سوچ کے کشوری جی یہ ودھان بن رہا ہے سنسار کو سنبھالنے کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا استھان ہے, میں کیسے آ گئی یہاں. تو انہوں نے کہا, سمجھے نے کہا کہ یہ ستیہ لوک ہے, کیول پرکاش اور رشی اور کچھ نہیں تھا, یہ ستیہ لوک ہے کہہ کر کے. اور وہ بولی کہ وہ سب رشی ایک سور سے رہنے لگے, مہاتما اور پرماتما کا سدھانت سنسار میں چلے گا, مہاتما اور پرماتما کا سدھانت سنسار میں چلے گا, اب یہ ودھان چلے گا, مہاتما اور پرماتما کا ودھان سنسار میں چلے گا. کسی جی کو کہا ان لوگوں نے, کہتے کہتے پھر کسی بدل گئی تو انہوں نے اپنے کمرے میں اپنی ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے کو پایا. تو سوچنے لگی کہ میں کیسے وہاں چلی گئی تھی اور کیسے وہاں سے یہاں آ گئی, وہ تو ہم کو پتا نہیں چلا. لیکن کافی دیر تک اس کمرے میں بیٹھے ہوئے یہی دھونی ان کے کان میں گونجتی رہی, مہاتما اور پرماتما کا ودھان سنسار میں چلے گا, مہاتما اور پرماتما کا ودھان سنسار میں چلے گا. کتنی دیر تک یہ دھونی ان کو سنائی دیتی رہی اور کتنی دیر تک اس دیکھے ہوئے درشیہ کی سمرتی بنی رہی, اور بیٹھے 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 سن لی رہی بہت دیر تک. تو یہ گھٹنا انہوں نے اپنے انبھو کی سنائی. کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل میں شنکا ہو کہ کیا جانے سوپن ہوگا تو, اور کیا جانے کلپنا ہوگی تو. تو بھائی جن کی شنکا ہو ان کو تو میں نہیں جانتی ہوں, شنکا والے شنکا کی بات جانا. لیکن میں مہاراج جی میں وشواس کرتی ہوں, میں رشیوں کے لوک ہتکاری چنتن میں وشواس کرتی ہوں, میں پرماتما کی شکتی میں وشواس کرتی ہوں, اور میں کشوری جی کی بانی میں وشواس کرتی ہوں. تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا, بہت اچھا لگا, جیسے کہ ایک دم ایک ہارے ہوئے سپاہی کو جیسے کہ ادرشیہ شکتی سے بہت بل مل جائے, اس پرکار سے مجھے بل مل گیا. اور اسی سمے میرے دھیان میں آیا کہ میں ستسنگی بھائی بہنوں کو سناؤں گی کہ بھائی کلیوگ کا نام لے کر کے اپنی بھول کو اوچت مت دینا کبھی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, کلیوگ کا نام لے کر کے اپنے من کی بری غلطیوں کا سمرتھن مت کرنا, اوچت مت دینا, اور سدھار سے اور استھان سے نراش کبھی مت ہونا. ٹھیک ہے, سیکار ہے, بہت دھنیہ واد. اب آگے سنیں, جب نیا نیا نشہ چڑھا سادھک ہونے کا, سادھو ہونے کا, تو طرح طرح کے پرشن سوامی جی مہاراج کے سامنے آ گئے. تو جب مجھ میں جو کریا کا ویگ تھا, خوب ویگ تھا, جس سمے مجھ کو یہ وشواس تھا کہ شاریرک بودھک بل کے پرشارتھ سے آدمی کا جیون پورن ہو جاتا ہے, اس سمے میں خوب کریا کے ویگ میں لگی رہتی تھی اور اپنے کو سمجھاتی رہتی تھی. بھیتر اور باہر کا سنگھرش, بھیتر تو اپنے وکاروں کے ساتھ لڑنا, بھیتر بھیتر اٹھنے والے وکاروں سے سنگھرش کرنا, نہیں میں ایسا نہیں کروں گی, نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی, نہیں میں اس سنکلپ کی پورتی نہیں کروں گی. تو بھیتر سے اٹھ رہا ہے اور اوپر سے زور ڈال کر کے دبا رہی ہوں. تو ایک تو بھیتر کا سنگھرش اور ایک باہر کی پرتیکول پرستھتیوں کا سنگھرش. تو اتنے سنگھرش میں پڑھ کے بھی کبھی ہار ماننے کی بات جیون میں آئی نہیں, बड़े जोर से कमर कस के जैसे कि सारे संघर्षों का सामना करने ही के लिए जीवन मिला हो, तो जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है संग्राम, ये हिम्मत से काम बंदे, जीवन है संग्राम, ये गाती रहती थी और संघर्ष में पड़ी रहती थी। हम महाराज के पास आने के बाद तो सब शांत करके बहुत धीरज से भीतर के सब संकल्पों को छोड़ करके उनकी वाणी को सुनने की जरूरत पड़ती, तो संभालते संभालते काफी समय लगा, जबकि भीतर बाहर की क्रिया के वेग को मैं थोड़ा थोड़ा समय के लिए अपने नियंत्रण में ला सकूं। तो महाराज जी तो एकदम पारखी, उनकी तो दृष्टि इतनी सैनी थी कि दूर से कोई साधक उनके पास आ रहा है तो क्या पूछने आ रहा है वो स्वामी जी को मालूम हो जाता था, और कैसा भी प्रश्न करे कितना भी सभ्य शिष्ट शब्दों में छिपा के करे महाराज जी उसकी मनसा को एकदम समझ जाते थे। तो मेरे को देख करके ही उन्होंने तो जान ही लिया कि इनको कैसे संभालना होगा। तो जब मुझे सेवा के लिए प्रेरित करने लगे, कार्य के लिए प्रेरित करने लगे, तो मैं बहुत प्रकार के प्रश्न करूँ उनसे कि स्वामी जी महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि जीवन मिलता है और प्रयत्न होने से कुछ नहीं करने से, तो इतने प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों में क्यों डाल रहे हैं मुझे, कैसी संभालू मैं, ऐसे ऐसे में तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो बहुत बढ़िया उत्तर स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लाली देखो असल की मासल होकर सेवा करो और चाहे लहराती हुई गंगा होकर सेवा करो, लाली तुमको सेवा करनी पड़ेगी। घड़ी की आवाज को देती हूँ जाने दो। अच्छा हिमाचल होकर सेवा करो, चाहे गंगा की तरह लहराती हुई सेवा करो, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें पीड़ितों की पीड़ा में भाग लेना पड़ेगा। तो एक दिन हंस करके मैंने कह दिया कि महाराज कितनी मुसीबत उठा करके भीतर बाहर कितना संघर्ष करके आपके पास बैठ करके किसी तरह मैंने व्यक्तिगत दुख का भार उतारा, अब बाज आए साधु संत होने से दुनिया भर के दुख का भार कौन लेता फिर रहने दो। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि तुम रह पाओगी, रह नहीं सकती। आज मैं कहता हूं कि करो, तो अगर मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी नहीं। गुरु हो तो ऐसा, मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी नहीं, और फिर अपने संकल्प से करोगी तो उस पहाड़ को पार करने में भी स्ट्रेंथ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ करो। अच्छी बात महाराज, ठीक है, क्रिया का वेग तो भीतर था ही, उसे जबरदस्ती निवृत्ति वाला बनना चाहती थी मैं, तो महाराज जी ने नहीं बनने दिया, अच्छी बात है। फिर अचल की मातल होकर सेवा करो, इसका क्या अर्थ है? सब स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया कि देवी जी जब राग की निवृत्ति हो जाती है, जब संत जन में सहज निवृत्ति आ जाती है, जब उनके अहम की सीमा टूट जाती है, वे सब प्रकार से सत्य से अभिन्न होकर सदा सदा के लिए शांत हो जाते हैं, तब उनसे आगे करणीय जैसा कोई कर्म शेष रहता नहीं, तब उनको सेवा करना है ऐसा संकल्प उठता नहीं है, तब वे सचमुच अपनी अहम कृति से अहम स्फूर्ति से प्रेरित नहीं होते हैं, तब तो वे अचल हिमाचल की तरह शांत रहते हैं और उनके जीवन का सत्य, उनके जीवन की शक्ति, उनके जीवन की करुणा, उनके जीवन का ईश्वरीय प्रेम स्वतः ही बिना किए जन समाज की सेवा करता है। कितनी बड़ी बात,
तो मुझे याद आ गया, किशोरी जी ने जब ऋषियों की बात बताई तो मेरे ध्यान में आ गया कि त्रिगुणा तीर्थ पुरुष सबके लोक के बासी धरती पर आएंगे नहीं, तो समझी ने इनकार कर दिया, पार हो गए कैसे आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं यहाँ, लेकिन जहाँ है वहीं से हमारे आपके कल्याण का काम कर उनके हृदय की पीड़ा, कौन बात की पीड़ा, हार मनुष्य होकर इतने दुख में पड़ा रहे, मनुष्य होकर हार मास के शरीर की दासता में बंधा रहे, मनुष्य होकर जीवन और मृत्यु के संघर्ष में पड़ा रहे, तो जिसने अपना दुख मिटाया वो दूसरे का दुख देख नहीं सकता, रहा नहीं, तो उनके हृदय की करुणा, उन ऋषि मंडल के हृदय की करुणा हम लोगों को संभाल रही है। अगर ये आस्था अपने भाई बहनों के जीवन में बैठ जाए तो कितना बड़ा बल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो अच्छा हिमाचल होकर सेवा करो, करो नहीं तब सेवा होती रहेगी, और ऐसी सेवा की भावना जिस महापुरुष में थी वो क्या करते थे, वो कहा करते थे, हे मेरे प्यारे, कभी कभी अपने भीतर भीतर सोचते सोचते उनके मुख से वचन निकल भी जाते थे, भगवान से बात में होती रहती थी तो हम लोग सुन लेते थे, तो एक दिन बात कर रहे थे तो कह रहे थे, हे प्यारे इस जीवन से जो सेवा लेनी वो ले लो, पर मेरे प्यारे मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे इस बात का भास न हो कि इसके द्वारा सेवा हो रही है। नहीं, अचल हिमाचल बनकर सेवा करने का क्या अर्थ है कि जीवन का सत्य अभिव्यक्त होकर जन समाज की पीड़ा से द्रवित हृदय से करुणा का रस बरसता रहे, पीड़ित जन समाज की सेवा बनती रहे और करने वाले को करनी न पड़े। तो अचल हिमाचल होकर सेवा करो का क्या अर्थ है कि तुम अपने जीवन को सत्य से अभिन्न कर लो, तो उस संत जीवनी से सेवा बनती रहेगी अपने आप होता, फिर या गंगा की तरह लहराओ, तो हमारे तो लहराने के दिन थे ना, दौड़ करके भाग करके क्लास लेते 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 आज से आज 2:10 पर घंटी लगेगी तो कॉलेज में छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे स्वामी जी के पास जाना है, तो 2:05 पर गाड़ी तैयार होकर के सामान सहित कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी। ये लड़कियां जो हमारे पास रहती थी, मुझसे सादरी सावित्री यही लोग संभालती थी, तैयार करके फाटक पर गाड़ी खड़ी है, घंटी लगी, क्लास में से निकली और कार में बैठे, स्टेशन गए, ट्रेन में बैठे, शाम के पास पहुंचे और वापस जा रहे हैं, तो मेरा टाइम टेबल ले लेते, मेरा हॉलीडेज लिस्ट ले लेते, साल में कहाँ कहाँ कब कब छुट्टी होने वाली है, किस दिन कॉलेज खुल रहा है, किस पीरियड में पढ़ाना है, तुमको कब उपस्थित होना है, महाराज आज ओपनिंग डे है तो आज मुझको 12 से पहले पहुंचना है, अच्छी बात, क्लास कब शुरू होने वाला है, महाराज 10:55 पर क्लास शुरू होगा, अच्छा ठीक है, रास्ते में नहला देंगे, रास्ते में जलपान करा देंगे, कार में बैठा करके 10:50 पर कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी गाड़ी, लाली जाओ पढ़ाओ, गाड़ी में से उतरी और क्लास में गई, तो इस प्रकार का बीता है विशेष वर्ष। तो ये गंगा की तरह लहराने वाली बात थी, तो हमने कहा कि इसका क्या अर्थ है महाराज, तब उन्होंने बताया कि जब तक क्रिया का वेग है भीतर तब तक मनुष्य को इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, कोई समय कोई शक्ति कोई क्षण कोई योग्यता तुम्हारी ऐसी न रह जाए जो कि जन समाज की सेवा में लग न जाए। तो ये गंगा की तरह लहरा करके करो, और बल कहाँ से आता है, अब आप देखिए स्वामी जी महाराज के वचन में कितनी सत्यता है, कहते हैं कि तुमको मालूम है ये शक्ति कहाँ से आ रही है, तो भाई देखो सब नदियों का उद्गम कहाँ है, होती है। जल कुंड सब भीतरी वहीं पर तो है, मानसरोवर उसी पर तो है। तो ये सब सब शक्ति का जो भंडार है वो कौन है जिसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता शेष हो। सब शक्ति का भंडार वो है और वो अचल हिमाचल होकर बैठा है और प्रयत्न होकर बैठा है, वरण्य कुछ भी उसमें शेष नहीं।